श्रीमद भागवतम के प्रथम स्कंद के तीसरे अध्याय के 31वें श्लोक को देख रहे हैं। मेरे पीछे माइक पे बोलिए। यथा नभसि मेघागौ, यथा नभसि मेघौ गो,
नभसि मेघो
रेणुर्वा पार्थिवो निले,
रेणुर्वा पार्थिवो निले,
एवं दृष्टरि दृश्यत्वम्,
एवं दृष्टरि दृश्यत्वम्,
आरोपितम् अबुद्धिभिः,
आरोपितम् अबुद्धिभिः।
यथा नभसि मेघौगो,
यथा नभसि मेघौगो,
रेणुर्वा पार्थिवो निले,
रेणुर्वा पार्थिवो निले,
एवं दृष्टरि दृश्यत्वम्,
एवं दृष्टरि दृष्टव्यम्,
आरोपितम् अबुद्धिभिः,
आरोपितम् अबुद्धिभिः।
देखिए, कल हमने चर्चा किया था कि किस प्रकार से लोग विराट रूप को भगवान मानने लगते हैं। विराट रूप क्या है? विराट रूप है ब्रह्मलोक से लेकर जितने 14 लोक हैं नीचे के पताल, उसकी ये धारणा की जाती है, ऐसा सोचा जाता है। धारणा का मतलब है ऐसा सोचा जाता है कि जो पताल है वह भगवान का चरण है। अगर हो सके तो खिड़की बंद रखेंगे तो अच्छा रहेगा। आवाज तुलसी जी को थोड़ा सा। हाँ, तो पाताल भगवान का चरण है। और आज हम क्लास नहीं दे रहे हैं, आज मैं डिस्कशन कर रहा हूं कि हो सकता हो मेरी अंडरस्टैंडिंग में कहीं कुछ गड़बड़ हो, तो शास्त्री जी को माइक पहले से देके रखिए, क्योंकि ना 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 आज तो आपको पहले से लाइसेंस दे रहे हैं, कहीं मिस्टेक, क्योंकि मेरी समझावट जितनी है मैं उतना प्रस्तुत करूंगा। ठीक है, तो लोग दो प्रकार से सोचते हैं। जैसे देखिए, हमारा स्थूल शरीर है जो आपको दिख रहा है, ये मेरा स्थूल शरीर दिख रहा है आपको, और मेरा सूक्ष्म शरीर है जो दिखाई नहीं पड़ता, जिसके हाथ पैर नहीं होते, वो दिखाई नहीं पड़ता। ऐसे ही लोग सोचते हैं, ऐसा है नहीं। मेरे संबंध में, जीव के संबंध में स्थूल और सूक्ष्म शरीर है मेरे, लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि भगवान के भी इसी प्रकार से स्थूल और सूक्ष्म अवस्था है। वह सोचते हैं कि जो विराट रूप है जिसमें जो ग्रहों से बना हुआ है, यह भगवान है। लेकिन ये भगवान नहीं है, भगवान तो सच्चिदानंद है, अपने धाम में रहते हैं, पूरी तरह से उसे परे हैं। और इसके परे और इसके अलावा भी एक सूक्ष्म रूप की धारणा करते हैं, सूक्ष्म विराट कह लीजिए, ऐसे कह लीजिए, जो उनको दिखाई नहीं पड़ता, उसकी चर्चा अगले श्लोक में करेंगे। तो यह एक प्रकार का आरोप है भगवान पे। जैसे मैं कहूं मोहित प्रभु, मोहित प्रभु आगे बैठे तो पकड़ ले, मोहित प्रभु कल के जो नीम के पेड़ गिरे वो आपने गिराए, तो आप क्या कहेंगे? प्रभु जी हमने नहीं गिराए, और मैं आपके प्रति क्या बर्ताव कर रहा हूं? मैं आपके ऊपर आरोप लगा रहा हूं, है ना? जो कार्य आपने नहीं किया, जो आप है नहीं, उसका आरोप लगाते हैं, है कि नहीं? इसी को तो आरोप कहते हैं। अब उसको एक उदाहरण से समझा रहे हैं आप किस प्रकार से वह भगवान पे आरोप लगाते हैं, उसको देखिए। और वही बात जीव पे भी घटित होगी। जिस प्रकार से हम जीव को पे इस स्थूल और सूक्ष्म शरीर का आरोप लगाते हैं कि मैं ये शरीर हूं, या वो ये शरीर है, या उसका वो मन इस प्रकार का है, तो उसी प्रकार से वो भगवान के ऊपर भी धारणा लगाते हैं कि ये विराट रूप भगवान है, ये विराट का सूक्ष्म रूप भगवान है। ना, वो दोनों ही भौतिक धारणाएं गलत हैं। इसीलिए इसका वर्णन करने के बाद श्रीमद् भागवत में इसका वर्णन होता है कि इस पे ध्यान नहीं करना है। लेकिन ये उन लोगों के लिए ध्यान करने के लिए बोला गया है जिन लोगों की चेतना बहुत मतलब जड़ है, और जड़ के बाहर कुछ देख नहीं सकते। तो हम लोग को ऐसा नहीं करना, हम लोग को हरे कृष्ण मंत्र पे ध्यान करना है, भगवान की लीला का स्मरण करना है। समझ में आ रहा है बात? लेकिन ये इसलिए कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, इसीलिए विराट रूप को अवतारों में नहीं शामिल किया गया था, क्योंकि विराट रूप भौतिक धारणा है, विराट रूप आध्यात्मिक नहीं है। समझ में आ रहा है? अब उसको कह रहे हैं यथा, जैसे ही शब्द आएगा यथा, यथा मतलब जैसे, जैसे का मतलब हो गया हम यहाँ पे कोई दृष्टांत प्रस्तुत कर रहे हैं। जैसे जैसे मैंने अभी बोला, जैसा, जैसे ही आप शब्द यूज करते हैं जैसे, अर्थात इसको आप कुछ दृष्टांत प्रस्तुत करना चाहते हैं। दृष्टांत मतलब उदाहरण। कह रहे हैं नभसि मेघौघ हो, मेघ ओघ, मेघ ओघ मतलब मेघों का समूह। तो लोग कहते हैं कि नभसि, नभ मतलब होगा आकाश, आकाश मेघों से ढका हुआ है, क्या ये आपने सुना है कि नहीं सुना है? और अभी अगर आप बाहर जाएं तो क्या आप ऐसा नहीं बोलेंगे कि आकाश मेघों से ढका हुआ है? सूरज नहीं दिख रहा है और आकाश मेघ मेघ बादलों से ढका हुआ है, क्या ये नहीं बोलते? क्या सही है? आकाश तो सर्वव्यापी है, तो आकाश कहां से बादल से ढक गया? या फिर अब एक प्रश्न किया जाए, शास्त्री जी को नहीं पूछें, शास्त्री जी को पता है। सानो प्रभु माइक लीजिए। जब बादल नहीं होते हैं तो आकाश का रंग क्या होता है, माइक बताइएगा।
वास्तव में आकाश का कोई रंग नहीं।
अरे बहुत तेज हो गए हैं, ठीक है सानो प्रभु बहुत तेज हो गए हैं, लेकिन वैसे आकाश का वैसे तो ठीक है, तो बुद्धिमान हो गए हैं, अबुद्धि भी नहीं है। तो आकाश का कोई कलर नहीं होता है, लेकिन हम लोग सोचते हैं आकाश जो है नीले कलर का है, बोलते हैं आकाश कितना सुंदर नीला आकाश है, नीला आकाश, नीला आसमां, ऐसे करके एक गाना याद आने लगा, जो भी है। तो यह है आरोप किया जा रहा है, आरोप समझ रहे हैं, उसमें वह गुण नहीं है लेकिन उस गुण का उसके ऊपर आरोप करना है। ये उदाहरण पहले समझ में आया, आकाश वाला, आकाश पे नीला कलर मानना, और या आकाश को ये कहना कि आकाश बादलों से ढका हुआ है, यह सब आरोप है, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं रेणुर्वा पार्थिवो नीले, पार्थिव का मतलब होता है क्या, वहां से पानी आ रहा है? अच्छा तो अरे भाई देखिए, ये इतना कोई बड़ा घटना नहीं हुई है कि आप लोग उस भागवत से अपने मन को हटा लें। हमने सुना था कल हम समाहित होकर सुनेंगे तब हमारे दुखों की निवृत्ति हो, ठीक है। कुछ क्या बम गिर गया वहां पे क्या? रेणुर्वा अरे इधर आके बैठ जाइए, क्या कठिनाई है अगर वहां बैठे, कुर्सी बैठ जाइए, यहां बैठ जाइए, व्यासन बैठ जाइए, क्या दिक्कत है? हम नीचे बैठ के क्लास दे दूंगा, उसमें कठिनाई नहीं है, लेकिन डिस्टर्ब मत। देखिए फिलोसफिकल बात है, फिर समझ में नहीं आएगा। रेणुर्वा पार्थिवो नीले, अनिल का मतलब क्या होता है? वायु, वेरी गुड। पार्थिव का अर्थ होता है पृथ्वी, समझते हैं पृथ्वी, तो वही शब्द पृथ्वी है, पार्थिव मतलब पृथ्वी का। रेणुर्वा पार्थिव, रेणु, रेणु मतलब धूल के कण, वह किसके गुण हैं? पृथ्वी के। लेकिन अब हम कभी कभी कहते हैं आज ये वायु जो है वो बहुत गंदा है, वायु गंदा नहीं है, धूल जो धूसरत्व है, धूलिका का गुण है, वह पृथ्वी का है, उसको हम अब वायु पे आरोपित करते हैं। दो उदाहरण समझ में आए, अनुपम कृष्ण प्रभु बताएंगे पहले और दूसरे उदाहरण, ये समझ में आना चाहिए श्लोक, तब समझ में आएगा कि क्या गलती हो रही है।
दो उदाहरण है यहाँ पे, पहला बादल का और दूसरा पृथ्वी का,
मतलब पहला आकाश का और
हाँ आकाश
और वायु का, यस
वायु का, कि मतलब जैसे हम कहते हैं कि बादल ने ढक दिया आकाश को, तो ये
बादल ने आकाश को ढक दिया, क्या सही बात है? नहीं। और क्या उदाहरण था
दूसरा, की जो आकाश है वो मतलब
नीले रंग का, सोच रहे कौन से रंग का, कौन सा रंग बताया था, पीला था नहीं बताया था, लाल तो नहीं बताया था, नहीं
वो नीले रंग,
नीले रंग का है। तो इसका क्या आकाश का कलर से कोई संबंध है? नहीं है। क्या आकाश को आच्छादित कर सकता है? नहीं है। दोनों ही बातें नहीं, ठीक है। हाँ अभी कह रहे हैं एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूट नहीं होती है, उसमें कुछ तत्व आ जाते हैं, वो तत्व क्योंकि गुण किसके हैं, उस केमिकल के हैं जो नीचे वस्तु में प्राप्त है, यही तो बात है। अब कह रहे हैं उसको फिर एवं, जैसे होता ना उदाहरण में जिस प्रकार तो इस प्रकार, एवं दृष्टरी दृश्यत्वम, दृष्टरी मतलब जो देखने वाला है, मेरे शरीर में अनुभव करने वाला, देखने वाला मतलब अनुभव करने वाला कौन है? आत्मा, चेतना, तो आत्मा का गुण है, इसमें तो प्रसन्न इसमें तो प्रसन्न क्यों हो गए, जो भी है ठीक है। और दृश्यत्व, दृश्य क्या प्रस्तुत हो रहा है मेरे शरीर में या हम सभी के शरीर में? अरे दृश्य समझ में आता है, टीवी में कुछ दृश्य दिखता है, तो जो दिख रहा है उसको दृश्य कहते हैं। तो दृश्यत्व मतलब देखे जाने का गुण, दिखे जाने का गुण, सॉरी दिखे जाने का गुण। दृष्टरी मतलब देखने वाला, समझ में नहीं आएगा तो आज ब्रेकफास्ट नहीं समझा, पूछूंगा, ऐसा नहीं छोड़ूंगा, नहीं ये नहीं कि दिमाग बंद करके बैठ गए। दृष्टरी मतलब देखने वाला, और दृश्यत्व, दृश्य मतलब देखा जाता है। जैसे आप मान लो टीवी के किसी दृश्य को देख रहे हैं, तो आप हो गए दृष्टरी और वो हो गया दृश्य, ये समझ में आ रहा है, ये भी कठिन है। हाँ ये आ गया, दृष्टि मतलब क्या, देखने वाला। ठीक, अब मैं आपके शरीर को क्लास दे रहा हूं कि आप लोगों को क्लास दे रहा हूं? हाँ आपको देख रहा हूं, तो यानी क्लास को ग्रहण करने वाले आप है ना कि आपका शरीर है? ये दोनों में अंतर देख पा रहे हैं, शरीर और शरीरी में अंतर देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं? तो हम क्या कह रहे हैं, ये दो बात पर इस प्रकार से घटित होगी। तो विराट रूप का आरोपण भगवान पे किया जाता है, भगवान सबको देखने वाले हैं, लेकिन हमें क्या दिख रहा है, जगत दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? जो लोग दिख रहे हैं वो दिख रहे हैं, और उनका आरोपण भगवान पे कर रहे हैं। समझ में आई बात? जैसे हम शरीर, ये स्थूल और सूक्ष्म शरीर नहीं है, लेकिन इनका आरोपण हम अपने ऊपर करते हैं या दूसरों पे करते हैं। ये बात समझ में आ रही है आरोप? भाई ये क्या नाम है आपका, दशरथी प्रभु, ये बहुत खराब आदमी है, मान लो ऐसे कोई बोलता है, कौन खराब है? शरीर खराब है, शरीर शरीर नहीं, नहीं शरीर में क्या खराब है? पृथ्वी खराब है, जल खराब है, वायु अग्नि, वो तो बराबर है आपके शरीर में, मेरे शरीर में। चलो यहां एक गड़बड़ हुआ ना, शरीर दिख रहा है, बुरा मत मानने का, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, किसी का मैं अपना ना एग्जांपल भी ले सकता हूं। ठीक, अच्छा, कभी कभी कहते हैं नहीं वो बहुत कामी, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, वो व्यक्ति कामी है, क्रोधी है, वो क्या है? वो है उसके सूक्ष्म शरीर का एनालिसिस है, और उन दोनों को हम आत्मा पे आरोपित करते हैं। कितना बड़ा अपराध है कि नहीं है ना अपराध? उसको तो देख नहीं रहे, उसके स्थूल और सूक्ष्म शरीर का एनालिसिस कर रहे हैं। और अच्छा चलिए, उसने तो किया, जब हमको बोला जाता है तो हम भी आरोपण कर लेते, अरे उसने कितना खराब बोला हमको। या हम अपने शरीर को संतुष्ट करके, संतुष्ट करने का प्रयास करने में सोचते हैं कि हम स्वयं संतुष्ट हो जाते हैं, है कि नहीं? ये कितना बड़ा इल्यूजन है, आप समझ रहे हैं मेरी बात? ये श्लोक बहुत सिंपल लगता है, लेकिन इसके एप्लीकेशन बड़े गंभीर है। प्रभुपाद इस बात को तात्पर्य में लिखेंगे, इसलिए मैं बात बोल रहा हूं। ये आरोप ऐसा नहीं कि दूसरे लोग कर रहे हैं, मैं स्वयं भी आरोप कर रहा हूं, मैं जो दृष्टि, मैं देखने वाला इस दृश्य शरीर से अलग हूं। पार्थ्रो समझ में आ रहा है, दृश्य और दृष्टि किसको पल्ले नहीं पड़ रहा? माइक दीजिए इनको, माइक पे पड़ेगा। किसको पल्ले नहीं पड़ रहा है?
मेरे मन को, मतलब
कौन बोल रहा है ये? आप बोल रहे हैं कि आपका मन बोल रहा है?
मन बोल रहा है।
अरे आप कौन हो? समझ रहे ना, अनुभव करने वाला आत्मा है, वो हमको नहीं दिख रहा है, लेकिन अनुभव करने वाला आत्मा है, वो दृष्टि है। आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो ये भी एक अनुभव है ना कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्या इस माइक को ही समझ में नहीं आ रहा है कि उसे समझ में नहीं आ रहा है? कुछ भी अनुभव नहीं हो रहा, ना समझ में आ रहा है, ना नहीं समझ में आ रहा है। यहां दो प्रकार के अनुभव हो रहे हैं, एक को समझ में आ रहा है और एक को नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन दोनों को अनुभव करने वाला एक जीव है, ठीक है, और वह उस सूक्ष्म और स्थूल शरीर से परे है, अलग है। इस बात को आगे स्थापित किया जाएगा। बहुत कठिन हो रहा है, दृष्टि दृष्टत्व। आरोपितम अबुद्धि भी, जिनकी पास बुद्धि नहीं है वह ऐसा आरोप करते हैं। ठीक, अनुवाद, इसीलिए मैंने और कोई टीका नहीं रखे, हम केवल प्रभुपाद जी की टीका पढ़ेंगे। तो प्रोसेस तो ऐसे घूमने लग जाएगा, क्या बोल रहे, इस लोग पे बड़ी मेहनत करी थी तब जाके थोड़ा समझ में आया था। ठीक है, तो ये लिंक तो समझ में आ रहा है, जो बात पहले बोली गई थी पिछले श्लोक में कि विराट रूप पे आरोप करते हैं, उसको उदाहरण से प्रस्तुत कर रहे हैं आप। ठीक है, ओके, उद्धव कीर्ति प्रभु, दृष्टि कौन है? अब एक देखिए, एक अमेजिंग चीज देख रहे हैं आप, मैंने इनका नाम लिया तो केवल प्रभु जी सतर्क हुए, आप लोग बाकी सोचे अरे हमसे तो पूछा ही जा रहा है। याद आ रहा है हमने एक शब्द बोला था, ज्ञान शक्ति। यस सर, फिर से बताइए ज्ञान शक्ति क्या होता है? पार्थ प्रभु बताएंगे ज्ञान शक्ति क्या होता है। अभी आपने, मैं जानबूझ के ये ड्रामा किया था, जैसे हाँ जैसे मैंने उद्धव कीर्ति प्रभु का नाम लिया, बाकी लोग रिलैक्स हो गए, मेरा नाम नहीं लिया गया। और प्रभु जी एकदम से, अरे क्या मेरे को क्या बुलाया? यस,
ज्ञान शक्ति मतलब मैं हूं और मैं अलग हूं तो दूसरों से।
वेरी गुड, जैसे अभी उद्धव कीर्ति प्रभु ने अनुभव किया कि उनका ही नाम पुकारा गया है और किसी का नाम नहीं पुकारा गया है कि नहीं? क्या ये रूम जो है ये सब अनुभव कर रहा है? नहीं कर सकता। अब देखिए, बार बार सुनने से ये खाली बोल ही रहे हैं, समझ में आ रहा है आपको ज्ञान शक्ति वाले बात? अब देखिए, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, बाकी लोग हंस रहे हैं, आप हाँ 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 सा कर रहे हैं, क्योंकि आप जान रहे हो कि मैं आपसे बात कर रहा हूं। मैं थोड़ा विनोद में बोल रहा हूँ सारी बातें, लेकिन आप सब लोग समझ रहे हैं व्यक्तिगत रूप से हर व्यक्ति अनुभव कर रहा है क्लास कुछ तो हो रहा है, हिंदी बोल रहे हैं, किसी को समझ में आ रहा है, कोई कह रहा नहीं गलत बोल रहे हैं, मतलब कुछ भी आ रहा है, वह एक हर व्यक्ति का यहाँ पे एक व्यक्तिगत अनुभव है, इतना कठिन नहीं समझ होगा समझ में। द एक्सपीरियंस इज योर इंडिविजुअल एक्सपीरियंस, मेक सेंस, ये बात बोल रहे हैं। लेकिन हम क्या सोच रहे हैं कि जो हमारे शरीर का परिवर्तन है या जो हमारे मन के परिवर्तन है वो मेरे हैं। शरीर में कोई कष्ट आता है तो मैं सोचता हूं कि मेरा कष्ट है, जबकि हम ये बोलते हैं मेरा लीवर खराब है, मेरा पेट खराब है, जबकि ये नहीं सोचते कि ये मेरा है, मैं नहीं हूं। इससे क्या हम, आपको प्रश्न करेंगे क्या इससे हम दुख से बच जाएंगे? हां, कष्ट से नहीं बचेंगे, दुख से बच जाएंगे। कष्ट होगा लेकिन हम उससे अपनी पहचान नहीं करेंगे। हाँ, पेन इज इनएविटेबल बट सफरिंग इज ऑप्शनल, ये सब समझ आ रही है? दुखी नहीं होंगे उससे आप? अच्छा, एक छोटा एग्जांपल मैं आज सोच रहा था, जैसे कल रात में भक्त लोग गए, कहे बहुत नुकसान हो गया, पेड़ गिर गए। आज एक बहुत सुंदर सा रिफ्लेक्शन सुबह उठते ही भगवान ने दिया, जिसकी वस्तु है वही ध्वंस कर रहा है तो मेरा क्या नुकसान है? पेड़ आपने तो उगाए नहीं, पेड़ सब ठाकुर जी के हैं, अब ठाकुर जी गिराए रहे उसको, तो हम क्या, हम उसमें क्या अपना नुकसान सोचेंगे? इसका अर्थ नहीं कि हम उत्तरदायित्व न लें, लेकिन रोए नहीं उसके लिए। ये सब बात मैं क्यों बोल रहा हूं, ये भी आरोप करने लगते हैं, ये पेड़ मेरे हैं, ये मेरा नुकसान हुआ, मेरा गिर गया सामान, खो गया। आप मेरी बात समझ रहे हैं? क्या पेड़ों के गिरना को हम रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। तूफान आने को रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। लेकिन अपनी दृष्टि को परिवर्तित कर सकते हैं, तो दुखी नहीं होंगे, परेशान नहीं होंगे। बहुत अच्छा श्लोक है ये, अगर विचार करें तो। बहुत जगह घटित होता है ऐसे, मन पे होता है, साहब बड़ा अपमान हुआ, आज हम जप नहीं कर पा रहे, बहुत परेशान किया, बहुत खराब बोला, हमारे कोई वक्त ही नहीं समझ रहा है, ऐसा करके सोचते हैं। या फिर अहंकार में, जानते नहीं तो मैं कौन हूं, तुमसे पूछो आप जानते हैं कौन है? ये सारी स्थितियां हम बार बार कर रहे हैं और बड़ा कठिन। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, एक वक्त इसने ऐसे प्रश्न किया इसी पे, प्रभु जी आत्मा तो शरीर है नहीं, मन है नहीं, तो अगर हम किसी की निंदा करते हैं तो हमें पाप क्यों लगता है? मैंने कहा पहली बात तो यह है क्योंकि शास्त्र में लिखा है। मैंने कहा दूसरा कि अगर आप इतने ही ब्रह्म ज्ञानी हो तो फिर निंदा क्यों कर रहे हो? इतना विवेक अगर आपके पास है कि भाई आत्मा अलग है और शरीर और मन अलग है तो क्यों फिर निंदा कर रहे हैं? ठीक है, तो इस प्रकार से लोग जो है बाईपास करना चाहते हैं शास्त्र के वचन को, नहीं निंदा करना चाहिए। ठीक है, अन्यवाद। बादल तथा धूल वायु द्वारा ले जाए जाते हैं, लेकिन अल्पज्ञ लोग कहते हैं कि आकाश मेघाच्छादित है, समझा दिया, उसके बाद समझाऊंगा नहीं, और वायु धूलिमय या मलिन है। इसी प्रकार वे लोग आत्मा के विषय में भी भौतिक शरीर की धारणा को आरोपण करते हैं। समझ में? आरोपण मतलब स्थूल और सूक्ष्म शरीर का आरोपण वे आत्मा पे करते हैं कि वे ऐसा है, ये ऐसा है, बोलते भी है ऐसा, बहुत बड़े अच्छे आदमी है भाई, वो सब बड़े खराब आदमी है, ऐसा बोलते हैं। तात्पर्य यहां पर, हाँ माइक बोलिए।
तो कोई आत्मा के स्तर पे है भौतिक देह में, आत्मा के स्तर पे तो उसको कितना भी मारा पीटा जैसे कोई कष्ट नहीं होगा।
कष्ट मतलब दर्द तो होगा लेकिन मतलब दुख नहीं होगा। देखिए अद्भुत, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। परम पूज्य शिला जयदेव गोस्वामी, जो मैंने भक्तों से सुना था, महाराज से सुना था कि उनके हाथ और पैर काट करके उन्हें कुएं में डाल दिया था चोरों ने, और वहां भी वो खुश कीर्तन कर रहे भगवान का। मैं हरिदास नहीं, यह तो अद्भुत था, हाथ पैर ही काट दिए उनके चोरों ने, और फिर जब उनको बाहर निकाला किसी कारणवश तो चोरों का ही हित करना चाहते थे। पूरी कथा याद नहीं आ रही, हल्की हल्की याद है, लेकिन अद्भुत है एकदम। या जैसे कि हम उसमें देखते हैं वो जो वासुदेव ब्राह्मण थे, उनके शरीर से कीड़े निकले थे। उदाहरण दिया जाता है, प्रभुपाद उसको बताते हैं, जैसे एक नारियल है, आप जानते हो इस उदाहरण को, नारियल जब कच्चा होता है तो खोल से चिपका होता है, समझ रहे हैं, हरा नारियल, लेकिन जब आप नारियल को धूप में रख देते धीरे धीरे करके अंदर ही रहता है वो, लेकिन पूरा तरह डिटैच हो जाता है। दधीचि ऋषि अपना शरीर दे दीजिए, जैसे मेरे को कुर्ता दे दीजिए अपना, नहीं अभी देने की जरूरत नहीं है, लेकिन मान लो जी कुर्ता नहीं सॉरी ये चादर दे दीजिए तो कोई कठिनाई नहीं है, लेकिन कोई कहे शरीर दे दीजिए तो बड़ा कठिनाई, क्योंकि हम आ सकते हैं, हम सभी लोग इस प्रकार से आ सकते हैं। और जैसे आपको स्मरण हो, जब भरत महाराज को मारने के लिए लेके जा रहे थे, उनको पता था क्या करने लेके जा रहे थे, ऐसा नहीं कि वो जान रहे थे कि फीस्ट खिलाएंगे हमको, या जब उनको माला पहना रहे हैं और उनका सजावट कर रहे हैं, उन्हें पता है कि क्या करने जा रहे हैं, लेकिन उनको वो बिल्कुल शरीर से, मतलब महाराज बता रहे थे कि किसी का कोपिन फाड़ दिया जाए तो उसे अधिक दुख होगा, लेकिन उनका उनका शरीर चला जाए तो उन्हें कोई दुख नहीं होगा, याद ही नहीं रहता, देह स्मृति नहीं जार, संसार बंधन कहां था, ये चेतना का स्तर ही अद्भुत है।
तो का ये अनुभव रहता है कि जो शरीर पूरी तरह से आत्मा में स्थित होते तो शरीर के कष्ट उनको
उसे प्रभावित नहीं होते,
प्रभावित नहीं।
क्या प्रमाण है,
रखिए,
सुखम आत्यंतिकम यतद् बुद्धि ग्राह्यम अतिन्द्रियम वेति यत्र न चैवायम सतस चलते तत्त्वतः और दुखे ना विचालयेत, ऐसे कहकर गीता में श्लोक आता है, जब इस व्यक्ति आत्यंतिक सुख की अनुभूति हो जाती है, चाहे कितना भी बड़ा दुख हो, भक्त उससे प्रभावित नहीं होते। जैसे वृत्तासुर, एक वो उनका गला काटता रहा था, वज्र वश से पहले शरीर त्याग दिया था, कोई प्रभावित नहीं थे। फिर एग्जाम्पल परीक्षित महाराज, आने दो सर्प को, हमें कोई दिक्कत नहीं, आप कृष्ण कथा करते रहिए, लेकिन ये भाव के स्तर पे, भाव के स्तर से पहले शरीर हमको परेशान करेगा, इसलिए शरीर का ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन भाव स्तर पे पहुंच गए फिर कोई ध्यान नहीं। प्रहलाद महाराज सुना, आपने सोच रहे थे कहां सर्प में डाल रहे, कहां डाल, कुछ कोई उनको ध्यान ही नहीं है, पूरी तरह चित्त कृष्ण ने ग्रहण कर लिया था। तो भाव के स्तर से नीचे जब हम हैं तो हमको शरीर का ध्यान रखना पड़ेगा, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जिस बात को बोलते हैं।
तो प्रभु जी, अभी जो हमें कष्ट अनुभव होता है वो मन बुद्धि जो हम अपनी पहचान करते हैं उससे होता है।
यस यस यस, जैसे कि हम कहें कि भाई आज मैंगो जूस नहीं मिला, अतृप्त रह गया, तो किसको नहीं मिला, मैं प्रसाद के रूप में नहीं कह रहा हूं, मन की एक अनुकूल वृत्ति को हम सुख कहते हैं, ये समझते हैं ना, कुछ चीजों को मन अच्छा मानता है और मन कुछ की प्रतिकूल वृत्ति को दुख कहते हैं, तो उससे पूरी तरह डिटैच हो जाता है।
आप देखिए, जैसे कि देखते हैं, मन और बुद्धि तो ये जड़ है, ये तो अनुभव नहीं कर सकता,
अनुभव नहीं कर सकता, लेकिन हम इस पे इसके अपना पहचान कर रहे हैं, और ये मिथ्यांकार के द्वारा होता है, भगवान की माया शक्ति के द्वारा होता है। माइक दीजिए प्रभु जी को। आप देखिए, कोई व्यक्ति बुरा बोल दे तो बहुत खराब लगता है।
यस, भौतिक जगत में भी हम देखते हैं कि अगर हमारा ऑपरेशन होता है और हमें बेहोश किया जाता है तो हमें अनुभव नहीं होता। जैसे मेरा ऑपरेशन हुआ था, मेरे सामने ही काटा जा रहा था, मैं सब कुछ महसूस हो रहा था, लेकिन मुझे दर्द नहीं हो रहा था, तो उस तरह से अगर
नहीं, लेकिन देखिए, समझिए, वहां तो कष्ट ही नहीं हो रहा था, लेकिन भक्तों को कष्ट भी हो तो वह भक्ति के सुख में इतने पूरित है कि उसको समझ, मतलब उनको उसको गणना नहीं करते। जैसे श्रील प्रभुपाद जी के अंत समय में, प्रभुपाद जी की जो शारीरिक स्थिति बहुत खराब थी, डॉक्टर कह रहा था कि इस ऐसी स्थिति में तो व्यक्ति को चीखना चाहिए, प्रभुपाद जी भागवतम अनुवाद कर रहे थे, कंप्लीटली ट्रांसेंडेंटल टू मटेरियल बॉडी, वह तो जब हम स्थिति में होंगे तभी समझेंगे। एक और एग्जांपल मैं याद करूंगा आ रहा है, श्रील भक्ति तीर्थ महाराज, उनको बोन कैंसर हो गया था, ल्यूकेमिया हो गया था, वो सब बोन में प्रवेश कर गया था, तो उनके हाथ भी टूट जाते थे, और उन्होंने मेरे गुरु महाराज को बोला, इंग्लिश में बता रहा हूं, मुझे याद है, उसी को सुनकर मुझे ज्वाइन करने की प्रेरणा मिली, कि आई विल नॉट ट्रेड this situation of mine with anything in this world because I am relishing the holy name as I have never relished before. कह रहे थे कि ये जो बोन कैंसर की स्थिति है, जो कष्ट की स्थिति है, ये मैं किसी से इसको चेंज नहीं करने वाला, कोई कहे कि हमको दे दो तो हम वापस लेंगे, ना, क्योंकि जितना हरि नाम हरि कथा का साधन मैं अब कर रहा हूं उतना मैंने कभी नहीं किया। ये चीज बहुत अद्भुत है भाई, समझ में नहीं आता, ये भगवान जब अनुभव देंगे तभी व्यक्ति समझ सकता है। गुण भाई महाराज भी इस प्रकार से थे, उनके बारे में तो नहीं जानता, इनका तो मैंने सुना है महाराज के सामने बात हुई थी। ऐसे एक और डिवोटी के बारे में था, इस प्रकार से वो जो मिलियन मैनी मून्स करके एक बुक पुस्तक लिखी गई है, उसमें भी ऐसे बताया, भक्तों ने शरीर त्याग रहे और उनका अनुभव कहते हैं कोई मतलब नहीं, और वस्तुतः देखिए शरीर में है क्या जिसमें हम आ सकते हो। आज ही मेरे मन में क्लास देना था, इसलिए विचार कर रहा था, मल मूत्र एक भी छेद नहीं जिससे कोई अच्छी चीज निकलती है, केवल वाणी से कोई अच्छा निकलता है, निकल सकता है अगर हम चाहें तो, वह भी अच्छा नहीं निकलता, तो आप देख सकते हैं कि सब कुछ गंदा है, फिर भी इससे छूटने का कितना डर है, आ सकती है। अब इसका अर्थ ये नहीं कि आत्महत्या कर ले, जब तक शरीर है तब तक भगवान का भजन करे, लेकिन ये शरीर केवल कष्ट देने के लिए, ये हमारा मित्र नहीं है, ठीक है। तात्पर्य यहां पर आगे और पुष्टि की गई कि हम उन भगवान को अपने भौतिक नेत्र तथा इंद्रियों से नहीं देख सकते जो पूर्ण रूप से आत्मा है, यहां तक कि ये इंटरेस्टिंग बात है, दृष्टि मतलब जैसे आकाश दिख नहीं रहा है लेकिन कलर दिखाई पड़ रहा है, या बादल दिखाई पड़ रहा है तो वो आरोप हो रहा है, जो जो देखने वाला है वो दिख नहीं रहा है और जो दिख रहा है उसको देखने वाले पे आरोपित कर रहा है। मैं दिख रहा हूं आपको अनुपम कृष्ण प्रभु, नहीं दिख रहा है, सही कह रहे हैं, हंस क्या रहे हो, हर चीज पे हंस रहे हैं। अब देखो देखो रुको रुको रुको, मैंने ये भी ड्रामा किया, हंसे ये और आप लोग सब इनके ऊपर हंसे, लेकिन इनको भी नहीं देख पा रहे है कि नहीं, समझ रहे हैं मेरी बात, ये बहुत बड़ा ज्ञान है लेकिन आप मुझको नहीं देख पा रहे हैं। ये मैं बहुत प्रयास करता हूँ चित्त में बार बार लाने का कि मैं उस व्यक्ति का एनालिसिस कर रहा हूँ मैनेजर बुद्धि से, लेकिन एक्चुअली मैं उसको नहीं देख पा रहा हूँ। कठिन होता है, बहुत आसान नहीं होता। हाँ, आश्चर्यवत पश्यति कश्चिद् एनम्, आश्चर्य इत्यादि, ठीक है। ये मन से कैसे पहचान करते मैं सही हूं आप गलत है, बुद्धि से पहचान, आप कैसे सही हैं मैं सही हूं, मेरा आइडिया ज्यादा अच्छा है, बुद्धि से पहचान करते। बहुत सारी पहचान चलती है, बहुत पहचान चलती है और बहुत खतरनाक है। और अगर नहीं विश्वास हो तो मैनेजमेंट की जूम मीटिंग्स में आ जाइए तो समझ में आएगा कि कितनी पहचान करते हैं लोग। यहां तक कि हम जीवों के भौतिक शरीर में विद्यमान आध्यात्मिक स्फुलिंग तक की पहचान नहीं कर पाते, ये तो स्पष्ट है, अभी चेक कर लिया। हम शरीर के बाह्य आवरण या जीव के सूक्ष्म मन की तलाश तो करते हैं लेकिन हम शरीर के भीतर का आध्यात्मिक स्फुलन नहीं देख पाते, इसको भी मैंने समझा दिया, नहीं देख पा रहे ना। अतएव हमें जीव के स्थूल शरीर की उपस्थिति के कारण जीव की उपस्थिति स्वीकारनी पड़ती है। इसी प्रकार जो लोग भगवान का दर्शन अपने वर्तमान भौतिक नेत्रों से या भौतिक इंद्रियों से करना चाहते हैं उन्हें विराट रूप का ध्यान करने की सलाह दी जाती है। ये और उदाहरण समझ लीजिए, भाई जैसे मेरा शरीर चल रहा है तो आप इससे अनुभव कर सकते हो कि मैं जिंदा हूं, शरीर तो मृत है लेकिन शरीर को देख रहे हैं, शरीर चल रहा है फिर हिलडुल रहा है तो हम समझ लेते हैं हाँ इंसान जिंदा है, वहां जीव है, आत्मा है, और जब मर जाएगा तो हाँ ये नहीं चल रहा है, शरीर को ही, तब भी शरीर को ही देख रहे हैं, अब इसमें कोई क्रिया नहीं है तो ठीक है जीव चला गया। यस, उसी प्रकार से कह रहे हैं कि जीव को जिस प्रकार से शरीर को देख करके जीव का अनुमान लगा रहे हैं जबकि जीव का जो गुण है वह शरीर से बिल्कुल अलग है, समझ में आ रहा है। उसी प्रकार से इस भौतिक जगत को देखते हैं, भगवान को देखने की शक्ति तो है नहीं और इसी को मान बैठते हैं कि ये भगवान है, इतने बड़े हैं ऐसे कर, ठीक है, लेकिन भगवान ऐसे नहीं है, भगवान सच्चिदानंदमय है। उदाहरणार्थ जब कोई व्यक्ति अपने कार में बैठकर कहीं जाता है उसे आसानी से देखा जा सकता है तो उस कार की पहचान उसमें बैठे व्यक्ति से की जाती है, ये समझ में आई बात। कई बार प्रधानमंत्री तो कई बार क्या हमेशा, अगर आप सर्च करो कि प्रधानमंत्री का कारवां तो प्रधानमंत्री नहीं दिखेगा लेकिन उसका कारवां समझते हैं, एक के बाद एक कारहा काफिला वही दिखता है और हम क्या बोलते हैं प्रधानमंत्री जा रहा है। क्या प्रधानमंत्री देख सकते हैं आप उस कार में, वो ऐसा बना के रखते कि कार को आप प्रधानमंत्री नहीं देख पाएंगे लेकिन आप उस कार काफिले को देख करके कह लेते हो कि। प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं कि जैसे कोई रिक्शे वाले को बुलाना होता कहते ए रिक्शा, तो रिक्शा को बुला रहे हैं कि रिक्शे वाले को बुला रहे हैं, क्या उत्तर है रिक्शे वाले को। या फिर जब कार में होता है व्यक्ति कहता है ए रिक्शा हट, ए रिक्शा हट हट यहां से, तो रिक्शे को हटा रहे हो कि रिक्शे वाले को, रिक्शे वाले को एड्रेस कर रहे हैं, रिक्शे वाले को एड्रेस कर रहे हैं लेकिन बोलते हैं ए रिक्शा हट। तो इसी प्रकार से रिक्शा बोल करके हम रिक्शे वाले को संबोधित कर देते हैं, समझ रहे हैं, तो ये बात है। जब राष्ट्रपति अपने विशिष्ट कार में बैठकर कहीं जाता है तो हम कहते हैं वह रहा राष्ट्रपति, उस समय हम कार की पहचान राष्ट्रपति के साथ करते हैं। प्रभुपाद जी चक्रवर्ती पाद की टीका को एग्जाम्पल दिया जाता है, उसको आजकल कंटेक्स्ट में बता रहे ताकि हम समझ सके, ये प्रभुपाद जी की ब्यूटी है, नहीं तो बड़ा कठिन है समझना। इसी प्रकार उन अल्पज्ञ व्यक्तियों को जो बिना जरूरी योग्यता के ईश्वर का तुरंत दर्शन करना चाहते हैं उन्हें ऐसा दिखाया जाता है कि विशालकाय भौतिक ब्रह्मांड भगवान का रूप है यद्यपि भगवान भीतर तथा बाहर सर्वत्र हैं। एक बात, पहली प्रश्न ये है कि भगवान को देखने की जरूरी योग्यता क्या क्या है, श्लोक सहित बताएं। क्विज नंबर वन, वेरी गुड, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने न संत सदैव हृदय विलोकयंती यम श्याम सुंदर मचिंत गुण स्वरूपम गोविंद मादि पुरुषम तम हम भजामि। प्रेम तो है नहीं, न प्रेम करने का साधन करने है, तुरंत भगवान देखने चाहते हैं तो ये देख लो बच्चे, ये विराट रूप है इसी को तुम भगवान मान लो। अब मैंने आपको बताया था कि कुछ लोग इस विराट रूप के प्रति बड़े आसक्त होते हैं, इतना बड़ा हाँ यही भगवान होंगे इस प्रकार से। वैसे भागवत में यह प्रश्न भी किया गया है कि भगवान अगर केवल बड़े हैं तो ये विशेष कैसे हो गए। भाई जैसे मेरे पिताजी मेरे से पहले आए तो वह उनका शरीर भौतिक है, उनके पिताजी का शरीर भौतिक, ऐसे करते करते ब्रह्मा जी तक जाएं तो ब्रह्मा जी का शरीर भौतिक है, तो भगवान केवल बड़े हैं या बिल्कुल ही विलक्षण है। मतलब ब्रह्मा जी के पिताजी का शरीर भौतिक है या आध्यात्मिक, यह प्रश्न भी किया गया और ब्रह्मा जी से ही किया गया, मुझे ज्यादा स्मरण आ रहा, नारद जी ने पूछा था ब्रह्मा जी से। तो ध्यान देना होगा कि भगवान पूरी तरह चिन्मय है और ब्रह्मा जी का जो शरीर है वह भौतिक है। अब ये कैसे हो गया, भगवान की अचिंत्य शक्ति से आए, भगवान से ही हैं लेकिन भगवान की अचिंत्य शक्ति से इस प्रकार से हुआ, तो इसलिए उनको ऐसे दिखाया जाता है। तो यानी हम लोगों को विराट रूप पे ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है, हरे कृष्ण मंत्र पे ध्यान करें वही परफेक्ट है, वही भगवत प्रेम जागृत कराएगा और वही उसके द्वारा हम भगवान को साक्षात देख सकते हैं। इस प्रसंग में आकाश के बादल, अच्छा एक और इंटरेस्टिंग बात है, प्रभुपाद यहां कह रहे हैं भगवान भीतर और बाहर सर्वत्र हैं, और इसमें आकाश की जो उपमा है बिल्कुल परफेक्ट बैठती है। जब बोल रहे हैं आकाश मेघ के द्वारा आच्छादित है, क्या आकाश मेघ के द्वारा आच्छादित है? नहीं है, आकाश तो सर्वव्यापी है लेकिन ऐसा बोला जाता है कि आकाश मेघ के द्वारा आच्छादित है। उसी प्रकार से यहां बोला जा रहा है कि ये देखो विराट रूप है लेकिन भगवान तो कणकण में व्याप्त है, और उनको ये सोचना कि ये केवल विराट रूप है यही भगवान है, ये गलत बात है, ये आरोपण है। तत्व भी सुनना चाहिए ना कभी कभी, क्या लगता है? इस प्रसंग में आकाश के बादल तथा आकाश की नीलिमा का उदाहरण किया जा सकता है। ये समझ में आ गया ना, आकाश बादल से आच्छादित नहीं रहता है, आकाश नीला नहीं होता है, लेकिन हम ऐसे सोचते हैं। यद्यपि आकाश की नीलिमा तथा आकाश भिन्न भिन्न है किंतु हम आकाश के रंग को नीला समझते हैं, परंतु यह तो केवल अल्पज्ञ की सामान्य धारणा है। आगे वाला श्लोक हम कल देखेंगे, कुछ पॉइंट्स और सीखने वाली है। देखिए जब हमारे मन में बुरे विचार आए तो हमें प्रयास करके अपने को डिसआइडेंटिफाई करना चाहिए। जैसे हमारे शरीर में भी तो बहुत सारे बुरे तत्व बाहर आते हैं, उसका वर्णन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इससे हम अपनी पहचान नहीं करते। उसी प्रकार से मन में बुरे बुरे विचार आते रहते हैं जाते रहते हैं, उससे पहचान नहीं करनी चाहिए, उसको संतुष्ट करने का हमें कोई, वी आर नॉट ऑब्लाइज्ड, इंग्लिश में कहूंगा वी आर नॉट ऑब्लाइज्ड टू हियर एंड डू एवरीथिंग व्हाट द माइंड सेज। हमारा जो मन और बुद्धि कहते हैं दूषित मन, उसको पूर्ण करने के लिए हम बाध्य नहीं है। और यह समझ लें कि हम इस शरीर और मन से भिन्न हैं, तो शरीर और मन की आवश्यकताओं को ही पूर्ण करने से मैं सुखी नहीं हो सकता। ये बात समझ रहे हैं, जब तक भगवान की भक्ति मुझे प्राप्त नहीं होगी जो कि आत्मा की मूल आवश्यकता है, मैं सुखी नहीं हो सकता। मैं मतलब दृष्टि, मैं मतलब आत्मा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हमें सीखनी पड़ेगी, और बार बार आरोपण होता रहता है कि शरीर ऐसा है। इसका अर्थ ये नहीं कि शरीर और मन के लिए कुछ भी ना किया जाए, शरीर की जो आवश्यकता है उसको पूरा करना चाहिए, लेकिन इसके पीछे लगे रह करके हम जीवन में संतुष्ट नहीं हो सकते। कोई प्रश्न है किसी का तो ले सकते हैं, 5 मिनट है, नहीं तो फिर हम रुकेंगे। एनी क्वेश्चंस? माइक पे बोलिए।
जैसे मन जो है आप कह रहे हैं पहचान ना करो, सही सिद्धांत तो है, लेकिन क्या होता है जो पुराने संस्कार होते हैं, मन बार बार आपको मारता है अंदर से, उसको प्राप्त करो जाके उसको प्राप्त।
अरे भाई कोई डकैत है वो आपको बार बार मार रहा है तो आप कहेंगे हाँ ठीक है भाई, त्रिनादपि सूचना पिटते रहे, जब वो मार रहा है तो आप भी मारिए।
आप भी मारिए का मतलब क्या
है? मतलब सुनना नहीं है, ना सुनना की आदत, यह बद्ध जीव के लिए कोई कठिन नहीं है।
मन की सुन लेता
है ना, डिसओबीडियंट होना यह कोई कठिन नहीं है, ओबीडियंट होना कठिन है। क्यों मोहित्रो, क्या लगता है आपको? तो वही बात है, अपने मन के हम दासत्व को स्वीकार किए हुए हैं, तो भाई कृष्ण और शास्त्र के अनुसार सुने, अभ्यास करें। यह आज मैं विचार कर रहा था, भक्ति में एक कठिनाई आती है क्योंकि हम अपनी पहचान मन से करते हैं, अपने शरीर से करते हैं, और इसी कारण से असत्संग को अच्छा मानते हैं। ये मेरी बात समझ में आ रही है? तो काफी साल के बाद ये समझ में आता है कि ये जो शरीर और मन की इच्छाओं को मैं तुष्ट कर रहा हूं, ये शरीर और मन मेरे दुश्मन है। मेरे कहने का अर्थ है इंद्रियां, ये मन मेरा दुश्मन है। क्या था? अनादिकाल से भौतिक वासना वासित मन महक है जिसमें भोगों की, ये मेरा दुश्मन है भाई। जैसे भारत कभी चाइना पे विश्वास करेगा कि हाँ हिंदू, अब दोबारा एक बार तो कर चुके हैं, अब करेगा हिंदू चीनी भाई भाई? कभी नहीं करेगा। एक बार झगड़ा हो चुका है, बहुत नुकसान खा लिए, अब कभी विश्वास नहीं करेगा। मैं एक पॉलिटिकल उदाहरण दे रहा हूं, देना नहीं चाहिए था, लेकिन लेकिन हम लोग बार बार धोखा खा करके भी विश्वास कर लेते, इसीलिए व्यक्ति गलत बात। मैं खाली बोल रहा हूं, आप कभी विचार कीजिएगा, हम लोग कुछ सोच के नहीं बोलते, बहुत बार कभी सोचते नहीं इसका क्या क्या ये भगवान का गुणगान है। ये मैं आप ही को नहीं बोल रहा, मैं अपने पे रिफ्लेक्ट कर रहा था कि सो मेनी टाइम्स आई एम स्पीकिंग, क्या ये बच्चे भगवान प्रसन्न होंगे कि इसीलिए भगवान ने मेरे को शरीर, मानव शरीर दिया है, वाणी दी है, मैं इसको व्यर्थ करूं, इसे क्या किसी का फायदा होगा? ये सोचने वाली बात। तो थोड़ा सा हम लोग रिफ्लेक्ट, अब मेरी बात समझ पा रहे हैं, वी बिकम रिफ्लेक्टिव कि मैं क्या बोल रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं, क्या एक भक्त को इस प्रकार से कहना चाहिए, क्या से भगवान संतुष्ट होंगे। तो धीरे धीरे अपने मन के दासत्व से व्यक्ति मुक्त होता है। ये हरे कृष्ण मंत्र का जप करने से बहुत लाभकारी है, जब जप करते हैं अच्छे से तो समझ में आता है, भागवत सुनते तो समझ में आता है कि ये नहीं कि जो मन मेरे में, मन जो भी कहके कहेगा करेगा, उसे करने के लिए तैयार हो जाऊं। और दूसरी बात यह है कि अगर मन इंद्रियों के द्वारा कार्य नहीं किया है तो वह धीरे धीरे वो वासना समाप्त हो जाती है। ये बात समझते हैं आप लोग? अदृष्टात अष्टात भावात न भाव उपजायते। जैसे कल ही मैं कुछ गंगा जी के बारे में बोलना चाह रहा था, वो श्लोक बहुत दिन से पढ़ा नहीं तो गायब हो गया। ऐसा नहीं कि कभी नहीं पढ़ा है, ये याद है कि पढ़ा है लेकिन याद नहीं आ रहा था। प्रथम स्कंद में अध्याय एक में है, ये याद है कि प्रथम स्कंद अध्याय एक में है, लेकिन श्लोक सामने बहुत दिन से सामने नहीं था तो गायब हो गया। आप लोग भी देखेंगे कि फिल्मी गानों के संस्कार मन में नहीं आते, नहीं आते ना, कभी आए किसी के जब करते समय? फिर बोल ही नहीं रहा है, हम बोलेंगे तो कभी नहीं आता, तो गायब हो गए हैं क्योंकि फिल्मी गाने हम सुनते नहीं है। तो उसी प्रकार से अन्य संस्कार भी चले जाएंगे, हरे कृष्ण मंत्र जप करते रहें बहुत शक्तिशाली है, ठीक है। और पॉजिटिव संस्कार डालते रहें भागवतम के जप करने के। एक बार मुझे वृंदावन चंद महाराज जैसे गाते हैं उसका संस्कार मन में आ रहा था, हरे कृष्ण, उनका स्पेशल स्टाइल है, मन में ऐसे स्मरण होता है हरे कृष्ण मंत्र गाते हैं। आज सुबह परम पूज्य लोकनाथ महाराज जैसे कीर्तन गाते हैं, वो स्मरण हो रहा था वो एक ट्यून करके। तो मैं बोल रहा हूँ कि वह संस्कार हमको पॉजिटिव रखेंगे तो नेगेटिव अपने आप चला जाएगा। अधिक अधिक भगवान के बारे में वर्णन करें, बोलें, आप करते ही हो, अच्छी आदत है, उसको करते रहे और ये संस्कार आते रहेंगे जाते रहेंगे, इनके इनसे कोई मेरा मतलब नहीं, ठीक है। ओके, सो वी शैल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।